लोंगिनुस समय प्रथम या तृतीय शताब्दी। लोंगिनुस अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार लोंजाइनस कब और कहाँ हुए यह निश्चित नहीं है। कभी कभी यह भी संदेह व्यक्त किया जाता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति वस्तुतः हुआ भी है या नहीं, किंतु परंपरा ने इस नाम का संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत के साथ जोड़ रखा है जिसे उदात्त नाम से अभिहित किया गया है। लोंगिनुस जन्म से यूनानी थे, उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। इन दोनों में किसी एक के पक्ष में निर्णायक प्रमाण नहीं है। जो बहुमत प्रथम शताब्दी का समर्थक है, ऐतिहासिकता का दंभ करने वाले और भारतीय इतिहास बोध की कमजोरी दिखाने वाले पश्चिम में भी इतिहास की क्या स्थिति रही है, इसका यह सुंदर उदाहरण है। लोंगिनुस के नाम से जो ग्रंथ संबद्ध तथा प्रसिद्ध है, उसका यूनानी नाम पेरिहुप्सुस है। शताब्दियों की उपेक्षा तथा विस्मृति के बाद पेरिहुप्सुस 1554 में प्रकाशित हुआ, जिसका श्रेय रोबेर तेल्लो नामक एक इतावली विद्वान को है, जिसका इसका पहला अंग्रेजी रूपांतर जॉन हाल ने 1600-1652 ईस्वी में किया और नाम रखा ऑफ दी हाइट ऑफ एक्वेलेंस। पेरिहुप्सुस मूलतः भाषा शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है, इसलिए हाल का दिया नाम ऑफ दी हाइट ऑफ एक्वेलेंस वाग्मिता का प्रकर्ष मूल यूनानी के अधिक निकट है, किंतु जैसा सेंट सबरी ने कहा है कि यह नाम न तो सुंदर एलिजेंट है और न सुप्रयोज्य हैंडी। कोई दूसरा शब्द भी इन विपत्तियों से मुक्त नहीं है जो सबलाइम में पाई जाती है। ध्यान में इतना ही रखना है कि सबलाइम जो उसके संकीर्ण शैलीगत अर्थ में ग्रहण न करके उन विशेषताओं से समन्वित व्यापक अर्थ में ग्रहण करना उचित है, जिससे उल्लास उत्पन्न होता है। जो कठिनाई सबलाइम में है वह कुछ वही कुछ दूर तक उदात्त में भी है। फिर भी उदात्त में हुप्सुस की उच्चता या उत्कर्ष की द्योतकता वर्तमान है, अतः सबलाइम की तुलना में उदात्त मूल से अधिक समीप है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में सबलाइम और हिंदी में उदात्त इतने प्रचलित हो गए हैं कि इन्हें बदलना न तो शक्य है और न आवश्यक। प्रयोग से ही शब्द की अर्थवत्ता पुष्ट होती है। सबलाइम तथा उदात्त में प्रयोग जनित वह पुष्टि आ चुकी है और थोड़ा अर्थ विस्तार कर देने पर ये उस अर्थ को के बोधक भी हो जाते हैं जो हुप्सुस में से अभिप्रेत हैं। पेरी हुप्सुस अरस्तु के पेरी पोइएटिकेस की तरह काव्य निरूपक ग्रंथ नहीं है। प्राचीन एथेंस या रोम में भी काव्य शास्त्र के समान एक दूसरा शास्त्र भी विकसित तथा लोकप्रिय था, जिसे भाषा शास्त्र रहे तोरीकेस कहते हैं। भाषा शास्त्र जैसा नाम से ही स्पष्ट है, भाषण संबंधी शिक्षा शास्त्र का है। चूंकि एथेंस में लोकतंत्र था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकहित प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी बात को तर्कसंगत तथा प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी है, इसलिए भाषण कला का एक स्वतंत्र शास्त्र विकसित हुआ। पेरी हुप्सुस का विषय भाषण कला की ही है, किंतु कथ्य को प्रभावी बनाना वक्ता और कवि दोनों का लक्ष्य है। दोनों श्रोता और पाठक को प्रभावित ही नहीं सम्मोहित भी करना चाहते हैं, अतः भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र के प्रतिपाद्य काफी दूर तक समान ही हैं। अंतर दोनों में इतना ही है कि कवि यदि भावोद्दीपन के द्वारा प्रभावित करता है तो वक्ता तर्क के द्वारा। इसका यह अर्थ नहीं कि वक्ता भावोद्दीपन का सहारा लेता ही नहीं और यही कि कवि की उक्ति तर्कहीन होती है। भाव और तर्क की बात केवल प्रधानता के आधार पर है। यही कारण है कि पेरी हुप्सुस भाषण शास्त्र का ग्रंथ होने पर भी काव्य शास्त्रियों के बीच सम्मानित हुआ। पेरी हुप्सुस पत्र के रूप में पोस्टीमियुस तेरेंटियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है जो लोंगिनुस का मित्र था या शिष्य रहा है। पत्र की भाषा यूनानी ग्रीक है। केकिलियुस नाम के एक व्यक्ति ने पहले उदात्त का निरूपण किया था, किंतु उसमें लोंगिनुस को अनेक त्रुटियां दिखाई पड़ी, जैसे पहला विषय की परिभाषा का अभाव, दूसरा उन पद्धतियों के विवेचन का अभाव जिनके सहायता से कोई अपनी शक्ति को विकसित कर उदात्त की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तीसरा भाव जैसे प्रमुख तत्व के निरूपण का अभाव है, चौथा उदाहरणों का अनपेक्षित बाहुल्य। केकिलियुस की इस कृति पर लोंगुनस ने पहले भी कभी तेरेंटियानुस के साथ विचार विमर्श किया था, उसी को विशद रूप देते हुए लिपिबद्ध करते हुए और केकिलियुस की त्रुटियों का यथासंभव निराकरण करते हुए लोंगिनुस ने यह रचना की। होरेस की आलोचना के प्रसंग में हमने कहा देखा है कि आर्स पोएटिका की रचना में भी पत्र के रूप में ही हुई है। काव्यशास्त्र अथवा भाषण शास्त्र जैसे गूढ़ विषय का पत्र में विवेचन, अन्य विशेषताओं जैसे उन्मुक्तता, अनौपचारिकता आदि के अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि विवेच्य विषय पर लेखक का कितना अधिकार है। पेरिहुप्सुस लगभग 60 पृष्ठों की लघु काय कृति है, जिसमें छोटे बड़े 40-44 अध्यायों का आकार बहुत ही असमान है। कुछ अध्याय 2-3 पृष्ठों के हैं तो कुछ केवल 7-8 पंक्तियों के। इसका एक कारण यह भी है कि कई अध्यायों के अंश खंडित हैं, पूरी पुस्तक का प्रायः 1/3 भाग लुप्त है। मनुष्य की तरह कृतियों के भी भाग्य सोते जागते रहते हैं। इसके अगणित उदाहरणों में पेरिहुप्सुस भी है। 1500 वर्षों तक इसका कहीं अता पता नहीं था। 16वीं शताब्दी के पूर्व इसकी कहीं चर्चा भी नहीं मिलती। काव्यशास्त्री इतिहास का निश्चय ही यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पेरिहुप्सुस जैसे महत्वपूर्ण कृति खंडित रूप में ही सही प्रकाश में आई। विद्वानों ने एक स्वर में से इस कृति की और कृतिकार की प्रशंसा की है। सेंट सबरी के शब्दों में लोंगिनुस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक है और पेरिहुप्सुस विस्मयकारी कृति आलोचना का कोई विद्यार्थी इस पुस्तक की एक दर्जन पंक्तियां पढ़ने के बाद यह अनुभव किए बिना नहीं रह सकता कि वह एक नई दुनिया में है। लोंगिनुस ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उत्कर्ष का श्रेय अरस्तु से बड़ा है और जिनकी प्रतिभा दियोनीसी उस अथवा क्विंटिलियन की तुलना में निश्चय ही अधिक शक्तिशाली तथा साहित्यिक परिशंसन कहीं अधिक तीव्र है। एलेन टेट ने उन्हें अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक माना है। विम सैट और क्लिंथ ब्रूक्स के अनुसार पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे है। एम्ब्रस का कहना है कि साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी होरेस सांसारिक और भाषण शास्त्री क्षुद्र हैं, तो लोंगिनुस जीवंत और आधुनिक हैं। डेविड डेचेज का मत लोंगिनुस का महत्व इस बात में है कि साहित्य के संबंध में जो प्रश्न प्लेटो या अरस्तु ने उठाए थे उनसे सर्वथा भिन्न प्रश्न लोंगिनुस ने उठाए। लोंगिनुस के संबंध में इस तरह के विचारों की संख्या अनंत है। वस्तुतः 17वीं शताब्दी के बाद का शायद ही कोई आलोचक हो जो लोंगिनुस से अभिभूत न हुआ हो, चूंकि दुर्दैव वश लोंगिनुस 1500 वर्षों तक विस्मृत रहे, इसलिए उनका महत्व लोगों के सामने ठीक ठीक प्रकट नहीं हुआ। अन्यथा उनके जैसा पैनी आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि किसी दूसरे आलोचक में नहीं दिखती, और जिस युग में उन्होंने पेरिहुप्सुस की रचना की उसे यदि ध्यान में रखे तो वे सचमुच अद्वितीय हैं। यहाँ हम संक्षेप में किंतु कुछ कुछ लोंगिनुस की पद्धति में ही उनके विचारों को उपस्थापित कर रहे हैं, जिससे सिद्धांतों के साथ उनकी कथन भंगी का भी थोड़ा आभास हो सके। यह दूसरी बात का भी संकेत अपेक्षित है। पेरिहुप्सुस के किसी एक अनुवाद पर निर्भर न कर हमने अपने अनेक अनुवादों की सहायता ली है, क्योंकि हमने पाया कि विभिन्न अनुवादों में परस्पर पर्याप्त भेद है, न केवल शब्दगत बल्कि अर्थगत और विन्यासगत। अध्यानुसार पेरिहुप्सुस के विषय सूची इस प्रकार है। पहला, एक अध्याय 1 से 7, भूमिका। ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का विवेचन आदि। दूसरा अध्याय 8 से 15, उदात्त के बीच स्रोतों का निर्देश, उनमें विचार की गरिमा तथा भाव की प्रबलता का निरूपण। तीसरा अध्याय 16 से 29, अलंकारों का निरूपण। चौथा अध्याय 30 से 38, शब्द रूपक बिंब आदि का निरूपण। पांचवा अध्याय 39 से 40, रचना की भव्यता का निरूपण। छठा अध्याय 41 से 43, दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी कुछ अन्य सिद्धांतों की दोषों की चर्चा। सातवां अध्याय 44, उपसंहार, यूनान के नैतिक साहित्यिक ह्रास के कारण का संधान, पुस्तक की भूमिका है। प्रिय तेरेंटियानुस, चूंकि तुमने आग्रह किया है कि तुम्हारे संतोष के लिए मैं उदात्त विषयक अपने विचारों को लिख डालूं, अतः पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि मेरे विचारों में व्यापक सार्वजनिक मूल्य की कोई वस्तु भी है भी या नहीं। और मेरे मित्र, चूंकि अपनी प्रकृति और योग्यता से प्रेरित होकर तुमने मुझे यह आग्रह किया है, इसलिए मुझे आशा है कि तुम इसके विभिन्न विवरणों के विषय में अपने निष्पक्ष निर्णय से मुझे अवगत कराओगे। देवताओं से हमारी किन बातों में समानता है, इस प्रश्नों में उत्तर में किसी ने ठीक ही कहा था कि परोपकार और सत्य में। जैसा हम कह चुके हैं कि पेरिहुप्सुस इसी तरह पत्र के रूप में है, अतः उसमें सर्व अत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग है। उदात्त को परिभाषित करते हुए लोंगिनुस कहते हैं, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यही वह साधन है जिसकी सहायता से महान कवियों और इतिहासकारों ने ख्याति और अविनश्वर कीर्ति अर्जित की है। उदात्त का प्रभाव श्रोताओं के अनुनयन परसुएशन से नहीं बल्कि सम्मोहन इंट्रेंसमेंट है। उसकी अपेक्षा वह निश्चय ही अधिक श्रेष्ठ है जो उसमें विस्मित कर सर्वदा और सर्वथा सम्मोहित कर लेता है। अनुनयन हमारे अधिकार की चीज है, अर्थात अनुनित होना या न होना हमारे हाथ में है, किंतु उदात्त तो प्रत्येक श्रोता को अप्रतिरोध्य शक्ति से प्रभावित कर अपने वश में कर लेता है। सृजनात्मक कौशल और वस्तु विन्यास पूरी रचना में आद्यंत वर्तमान है और क्रमशः सनेह सनेह उभरते हैं, किंतु बिजली की कौंध की तरह की सही समय पर उदात्त की एक कौंध पूरे विषय को उद्भासित कर देती है। निष्कर्ष की पहला, उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। दूसरा, उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं सम्मोहन है। तीसरा, उदात्त यदा कदा नहीं बल्कि सदा सबको और संपूर्णतः सम्मोहित करता है। चौथा, उदात्त सृजनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमक उठता है। उदात्त सहज है या उत्पाद्य। उदात्त के स्वरूप निर्धारण के बाद लोंगिनुस दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि उदात्त सहज है या उत्पाद्य। कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिभा सहज अर्थात जन्मजात धर्म है, उसे सीखा नहीं जा सकता। प्रकृति के अतिरिक्त और किसी चीज से वह उत्पन्न नहीं होती। उनका यह भी कहना है कि नैसर्गिक प्रतिभा से उत्पन्न कृतियां नियमों के कठोर बंधन और दबाव से निष्प्राण हो जाती हैं। लोंगिनुस के अनुसार इस मत का विरोध पक्ष भी निर्बल नहीं है, यह ठीक है कि प्राकृतिक प्रतिभा के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु यह भी सही है कि प्रकृति नियमहीन या उच्छृंखल रूप में कुछ नहीं करती। यद्यपि सभी कार्यों का मूल कारण और सृजनात्मक आधार प्रकृति ही है, फिर भी किसी कार्य की मात्रा और काल का निर्धारण, कोई कार्य कितना और कब होगा अथवा उसके उपयोग के लिए स्पष्ट नियम का निर्माण किसी तंत्र या व्यवस्था के अंतर्गत आता है, कहने का अभिप्राय यह कि उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं है। उदात्त को एक खतरे से बचाना भी आवश्यक है। यदि उस पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो वह अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए उदात्त के लिए अंतः प्रेरणा की जितनी अपेक्षा है उतनी ही नियंत्रण की भी। लोंगिनुस उदात्त की उत्पत्ति के लिए केवल प्रतिभा को ही पर्याप्त नहीं मानते, उसके साथ ज्ञान व्युत्पत्ति को भी आवश्यक बनाते हैं। तात्पर्य कि उदात्त नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उसकी सृष्टि संभव है। उदात्त के अवरोधक दोष, तीन दोष उदात्त के अवरोधक हैं। पहला, शब्द भंडार, ट्यूमिडिटी आर बोम्बेस्ट, बलिसता प्यूरिलिटी, भाव भंडार एम्पटी आर फ्लैश पैशन। शब्द भंडार से बचना बड़ा कठिन है। यह बात यह है कि कुछ लेखक अशक्तता, फिडलनेस और सुक्ष्मता, आर्डिटी से बचने के प्रयास में शब्दाडंबर के शिकार हो जाते हैं, किंतु वो भूल जाते हैं कि शोथ स्वेलिंग शरीर की तरह रचना में भी अवांछनीय है। स्थलता फ्लैबिनेस का प्रबल अभीष्ट के रूप के विपरीत होता है। कहावत है कि जलोदर के रोगी से बढ़कर और कुछ भी शुष्क नहीं होता, तो शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वह उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। बलिशता बचकानापन भव्यता का विलोम है, क्योंकि यह निर्बल और संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होती है और लेखन संबंध दोषों में सबसे हेय है। बालिशता अप्रौढ़ता से उत्पन्न बचकाना विस्तार है, जो रचना को जड़ बना देती है। यह दोष तब आता है जब लेखक रचना को असाधारण या आकर्षक या भड़कदार बनाना चाहता है, पर हाथ लगती है केवल कृत्रिमता और प्रदर्शन प्रियता। भावाडंबर या मिथ्या भाव तीसरा दोष है। इसकी उत्पत्ति स्थानस्थ या निस्सार भाव से होती है, अर्थात जहाँ भाव की आवश्यकता नहीं है, या जो कहे कि जहाँ भाव के बदले संयम की आवश्यकता है, वहाँ जब लेखक भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति में प्रवृत्त होता है तो भावाडंबर आ जाता है। तात्पर्य कि स्थानस्थ अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर है। शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर, ये तीन दोष उदात्त के बाधक या अवरोधक हैं। इन सभी दोषों का निराकरण एक ही है और वह है नवीनता का आग्रह, जिससे आज के लेखक ग्रस्त हैं। सच तो यह है कि हमारे दोषों के स्रोत भी वे ही हैं जो गुणों के। यदि सुंदर शैली, भव्य कल्पना और प्रसन्न पद योजना प्रभावी रचना के उपादान और सफलता के आधार पर हैं, तो विफलता के भी आधार ये ही हैं। औचित्य और मर्यादा के निर्वाह से जहाँ ये रचना को सफल बनाते हैं, वहाँ अनौचित्य या अमर्यादा से विफल भी। सच्चे उदात्त की पहचान, कहना न होगा कि उदात्त की सिद्धि तभी संभव है जब उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए, किंतु यह कार्य सरल नहीं है, क्योंकि यह साहित्यालोचन दीर्घ अनुभव की चूड़ान्त उपलब्धि है। जजमेंट ऑफ लिटरेचर इज द क्रोविंग अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, धन सम्मान यश और प्रभुत्व की जो बाहरी तड़क भड़क दिखाई देती है उससे बुद्धिमान मनुष्य प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह इनके भीतरी खोखलापन को अच्छी तरह समझ जानता है। इसी तरह हमें यह भी देखना चाहिए कि कोई काव्यिक अलंकार के अतिशय प्रयोग से तो भव्य नहीं लग रहा है, जिन्हें हटा देने पर वह अरमणीय लगने लगेगा और प्रशंसनीय के बदले निंदनीय बन जाएगा। वास्तविक उदात्त में कुछ ऐसी अंतर्निहित शक्ति होती है कि वह हमारी आत्मा को ऊपर उठा देता है और हमें ऐसे आनंद से भर देता है कि लगता है कि मानो हम जो सुन रहे हैं उसके सृष्टा हम स्वयं हैं। यदि कोई बुद्धिमान और अधीर व्यक्ति किसी संदर्भ को अनेक बार सुनकर भी उसकी भव्यता का अनुभव नहीं करता अथवा शब्दार्थ के अतिरिक्त चिंतन के योग्य उससे और कोई सामग्री नहीं पाता, बल्कि उसके विपरीत अवधान पूर्वक विवेचन करने पर उसका प्रभाव अधिकाधिक क्षीण हो जाता है या एक बार सुनने तक ही टिकता है, तो इसका अर्थ है कि वह सच्चा उदात्त नहीं है। क्योंकि कोई रचना तभी महान होती है जब वह बार बार के परीक्षण से भी फीकी नहीं पड़ती, जब उसके प्रभाव को रोकना संभव नहीं होता और जब स्मृति में वह अटल और अमिट रूप में अंकित हो जाती है। सामान्यतः उदात्त अपने रूप पूरे सौंदर्य के साथ उन्हीं रचनाओं में रहता है जो सभी मनुष्यों को सदा आनंद देती है। जब विभिन्न व्यवसायों, जीवन पद्धतियों, आकांक्षाओं, रुचियों, उम्रों और भाषाओं के लोग किसी रचना के संबंध में सर्वथा एक मत हो, तो ऐसे परस्पर असमान व्यक्तियों का सर्वसम्मत निर्णय उस महनीय वस्तु में हमारी आस्था को दृढ़ और अविचल बनाता है। उदात्त के पांच स्रोत, लोंगिनुस उदात्त के पांच स्रोत मानते हैं। पहला, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा, प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। तीसरा, अलंकारों, विचारालंकारों और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। चौथा, भव्य शब्द योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत। पांचवा, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। इनमें प्रथम और द्वितीय बहुत कुछ जन्मजात हैं और शेष तीनों कला से उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रथम दोनों प्रतिभा की देन है और शेष कला व्युत्पत्ति अभ्यास की। लोंगिनुस की मान्यता है कि सभी भाव उदात्त से उपयुक्त नहीं होते। करुणा भय जैसे भाव इतने क्षुद्र हैं कि इनमें उदात्त की कल्पना भी नहीं हो सकती। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि अनेकत्र भाव के बिना भी उदात्त की स्थिति पाई जाती है, अर्थात उदात्त के लिए भाव का होना जरूरी नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पहली मान्यता का अरस्तु से विरोध है। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के प्राण हैं। दुखांतक के प्रभाव का सारा दार मदार करुणा और भय पर ही निर्भर है। इसके विपरीत लोंगिनुस इन दोनों भावों को क्षुद्र कहते हैं और उदात्त की सीमा इन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसा करते समय निश्चय ही उनके मन में अरस्तु प्रचंचन रूप में से वर्तमान है, अन्यथा इतने जोरदार ढंग से करुणा और भय का प्रत्याख्यान अपेक्षित नहीं था। दूसरी मान्यता में स्ववचन विरोध है। एक ओर तो लोंगिनुस उदात्त के पांच स्रोतों में भाव की को प्रधान द्वितीय स्थान देते हैं, उसे जन्मजात मानते हैं। यही नहीं, केकिलियुस के उदात्त विषयक निरूपण में उनकी अरुचि और असंतोष का एक कारण यह भी है कि केकिलियुस ने भाव की अपेक्षा कर दी है। लोंगिनुस के उदात्त निरूपण का एक सबल कारण भाव की प्रतिष्ठा भी है। भाव को इतना महत्व देकर यह कहना कि भाव के बिना भी उदात्त की निष्पत्ति होती है, वध तो व्याघात हो जाता है। उनके उदाहरण से भी यह स्पष्ट है कि वे भाव को उदात्त का अनिवार्य अंग नहीं मानते। उत्पत्ति ग्रंथ दी बुक ऑफ जेनेसिस में से उदात्त उद्धृत उदात्त का उदाहरण भावहीन है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। इसमें विस्मय मिश्रित भव्यता तो है पर भाव का मर्म स्पर्श भी नहीं है। लोंगिनुस के ने वक्ताओं के भाषण का हवाला देते हुए कहा है कि उनमें भव्यता और गरिमा तो होती है किंतु भाव सदा नहीं होता। इससे सिद्ध है कि भावुकता वक्ता सबसे कम प्रभावी होते हैं और जो उत्तम वक्ता है वे भावुकता से बचना चाहते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि केकिलियुस की तरह यह मान लेना है कि उदात्त से वे भाव का कोई संबंध ही नहीं है। लोंगिनुस का अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मैं विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूँ कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। वह भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद भर देता है और उसे दिव्य अंतःप्रेरणा से समुच्छविष्ट कर देता है।